राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare
Jai Ram.
ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಶ್ರೀಮದ ವೈಜನಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕೀ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದಕೀ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕೀ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಬೃಂದಕೀ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ಬೃಂದಕೀ ಪ್ರಜಭೂಮಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಧಾಮಕಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಧಾಮಕಿ ಗಂಗಾಮಾಯಿ ಯಮುನಾಮಾಯಿಕಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಕಿ ಸಮವೇದ ಗೌರಭಕ್ತ ಬೃಂದಕಿ ಆಲ್ ಗೌರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗೌರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ ಗೌರೀಸ್ ಆಲ್ ಗೌರೀಸ್ ಟು ಗುರು ಅಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯ ಮುದೀರ್ಯಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಶೋ ಭದ್ರೇಶೋ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವದೀರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೇ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನದಾರಣ್ಯಂ ಆಪ್ ಸಬ್ ವೈಷ್ಣವೋಂ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಮೈ ಸಾದರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ತಾಕಿ ಮೈ ಜೋ ಭೀ ಕಹೂಂಗಾ ವೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಕಾ ಹೀ ಹೋ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೋಂ ಸೇ ಹೀ ಮೈ ಜೋ ಕಹನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂ ತೋ ಆಜ್ ಕಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಹಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಕಂದ ಸಾತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂದ್ರ ಶ್ಲೋಕ್ ನಂಬರ್ 28 ಮೈ ಶ್ಲೋಕ್ ಪಡ್ತಾ ಹೂ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಕ್ ಮೇರೆ ಪೀಚೆ ದೋರಾಯಿ ಥೋಡಾ ಊಪರ್ ಗೆ ಬಡಾ ಹೋಗಿ
ಷಡ್ವರ್ಗ ಸಂಯಮೈಕಾಂತ ಸರ್ವಾ ನಿಯಮ ಚೋದನ ತದಂತಾಯದಿ ನೋ ಯೋಗಾನ್ ஆவகேயுஷ்ரமாவக. ஷட்வர்க சம்யமே காந்தா சர்வா நியமசோதனா ததாந்தா யதினோ யோகான் ஆவஹேயு ஶ்ரமாவஹ. ஷட்வர்க சம்யமை காந்தா சர்வா நியமசோதனா ததந்தா யதினோ யோகான் ஆவஹேயுஷ்ரமாவஹ.
शब्दार्थ तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की षड्वर्ग छह तत्व पांच कर्मेंद्रियां तथा छठा मन संयम एकांता इंद्रिय दमन का परम लक्ष्य सर्वाह ऐसे संपूर्ण कार्यालाप नियम चोदना इंद्रियों तथा मन को वश में करने हेतु अन्य विधान तत् अंता ऐसे क्रियाकलापों का परम लक्ष्य यदि नो नहीं योगान परमेश्वर के साथ जुड़ने की खड़ी अवहेयु हो ले जाती है. ஸ்ரம ஆவஹா. ஸ்ரம் சமய ததா ஸ்ரம் கா அபவ்யய். அனுஷ்டான் கர்மகாண்ட் விதிவிதான் தபஸ்யா ததா யோகாபியாஸ். யே சபி இந்திரியோ ததா மன் கோ வஷ்மே கர்னே கே நிமித்த ஹை. கிந்து இந்திரியோ ததா மன் கோ வஷ்மே கர் லேனே கே பஷாத் பி யதி வஹ பரமேஸ்வர் கா தியான் நஹீ கர்த்தா தோ யே சம்பூர்ண காரியகலாப் பரிஸ்ரம் கே அபவ்யய மாத்ர ஹை. और एक बार पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए. अनुष्ठान कर्मकांड विधि विधान तपस्या तथा योगाभ्यास ये सभी इंद्रियों तथा मन को वश में करने के निमित्त हैं, किंतु इंद्रियों तथा मन को वश में कर लेने के पश्चात भी यदि वह परमेश्वर का ध्यान नहीं करता तो ये संपूर्ण कार्यकलाप परिश्रम के अपव्यय मात्र है. श्रम ये वही केवलम. तात्पर्य हमारे हाथ में नहीं है. छोटा कर, वो थोड़ा आगे बढ़ा ना, इसमें नहीं कर सकते. पता नहीं नहीं हो रहा है कि ट्राई किया था, थोड़ा ऊपर जा रहे, क्षमा कर. तात्पर्य कोई यह तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास से तथा वैदिक नियमों के अनुसार कर्मकांड करने से गुरु की एकांत भक्ति किया बिना ही मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हो सकती है, किंतु वास्तविक तद्य तो यह है कि योगाभ्यास से मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन पद तक पहुंचना चाहिए. जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जानवस्ति तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिना. जानवस्ति तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिना. ध्यान में लीन मनुष्य योगाभ्यास में तब सिद्धि प्राप्त करता है जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन कर सकता है. मनुष्य अनेक प्रकार के अभ्यासों से इंद्रिय को वश में करने की स्थिति तक पहुंच सकता है, किंतु इंद्रिय को वश में करने मात्र से ही कोई ठोस निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता. किंतु गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अत्यंत श्रद्धा होने से मनुष्य ने ना केवल इंद्रियों को वश में कर सकता है अपितु परमेश्वर की अनुभूति भी कर लेता है. जैसा ही बता गया है, यस्य देवा परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथितान ह्यर्था प्रकाशयन्ते महात्मनः. जो व्यक्ति श्री भगवान तथा गुरु दोनों पर अटल श्रद्धा रखते हैं उन्हीं महात्माओं को वैदिक ज्ञान का अवश्य आशय वैदिक ज्ञान का आशय स्वतः प्रकट होता है. श्वेताश्वर उपनिषद 6:23-23. आगे भी कहा गया है, तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया तदा तरंचग्नो भवार्णवम्. गुरु की सेवा करने मात्र से ही मनुष्य अज्ञान के सागर को पार कर सकता है और भगवत धाम को लौट सकता है. तब उसे क्रमशः श्री भगवान के साक्षम दर्शन होते हैं और श्री भगवान की संगति में जीवन का आनंद ले सकता है. योगी का परम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में आना है। जब तक उसकी प्राप्ति न हो तब तक तथा कथित योगाभ्यास व्यर्थ का परिश्रम है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऊकं करोति वाचालं भंगं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। तो आज के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत दिशा में जाते रहते हैं, जीवन का लक्ष्य को भूल जाते हैं और योगाभ्यास करना, अपने इंद्रियों को संयम में रखना, इतना तक ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत परिश्रम करते हैं और परम लक्ष्य भगवान का प्राप्ति को भूल जाते हैं। अनेक तरह के योगा अभ्यास अच्छी है अगर कर रहे हैं तो उससे मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, मगर असली चीज़ तो ये है कि हम भगवान को प्राप्त करें। ये जो चार बताया गया है इस श्लोक में, अनुष्ठान विधि विधान, अलग अलग विधि विधान, तपस्या, योगाभ्यास, अलग अलग के तपस्या, कोई मौन व्रत नियम लगा देते हैं, मौन रहता है 5 दिन पूरा कार्तिक मौन, हाँ पूरा कार्तिक ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये पूरा इंद्रियों को वश में करने के लिए थोड़ा सा सहायता कर सकता है, मगर असली तो ये है अगर हम इंद्रियों को वश में करने के बाद हम क्या करेंगे, ये असली चीज़ है। जनरली क्या होता है, देवता को प्रसन्न करके देवता से वर मांग लेते हैं, हाँ अलग अलग का अनुष्ठान, अलग अलग का कर्मकांड ये करके पुत्र संतान प्राप्ति या गृह वाहन प्राप्ति या और कुछ प्राप्ति, ये प्राप्ति वो प्राप्ति के लिए बड़ा कठिन अनुष्ठान नियमों को पालन करके करते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है, उससे क्या लाभ होता है, वो तो बहुत बड़ा घर पा लिया, बहुत बड़े अच्छा गाड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली, बुढ़ापा आ गया, संपत्ति क्या करेगा, गाड़ी क्या करेगा, वो एक दिन गुजर जाएगा, मर जाएगा, मरने के बाद ये जो संपत्ति है गाड़ी है पीछे नहीं आएगा, एक सुई भी पीछे हमारे साथ नहीं आएगा, तो ये पूरा क्या हो गया, श्रम एव हि केवलम, पूरा परिश्रम वेस्ट हो गया है, इसका कोई यूज नहीं। अगर मन को वश करने के बाद सदा भगवान को चिंतन करें, भगवान के ऊपर मन लगाए, भगवान के ऊपर तपस्या करें, भगवान के ऊपर ध्यान करके भगवान का ही हमारे जीवन को समर्पण करें, तब भगवान का प्राप्ति हो सकता है। हम पुनः इस दुखालयम अशाश्वतम, इस धरती पर जो दुखालय है अशाश्वत है, इसके ऊपर नहीं आना पड़ेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये शरीर ऐसा है, एक न एक दिन फट जाएगा। जैसे ही हम फटा हुआ वस्त्र को छोड़ के दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा, जब ये शरीर नष्ट हो गया, पुराना हो गया, खत्म हो गया, तो वो शरीर से निकल के दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। और दूसरा शरीर जो भी मिलता है इस धरती पर, वो पंचभूतों से बनाया गया है, और पंचभूतों में कुछ दिन के बाद मिल जाएगा। सिंपल सिंपल तरीका। अगर आटा में पानी लगा के आपने अच्छा सा भून दिया, ये कर लिया आटा का, और कुछ देर आप गर्मी में रख दो, उसके अंदर का पानी थोड़ा 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 करके निकल जाएगा और आटा बचेगा। अगर उसको चून चून करते हैं फिर आटा हो जाएगा। वैसा ही हमारा शरीर जैसे वृद्धावस्था या बीच में कोई भी स्थिति पर पहुंच गए, जिधर ये पंचभूतों अपने अपने जगह पर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो पंचभूतों में मिल जाएगा। फिर आत्मा क्या करती है, अरे मेरा शरीर तो गया, दूसरा शरीर प्राप्त किया। मनुष्य शरीर हो या कुत्ता बिल्ली का शरीर हो, हमारे अपने अपने कर्म के अनुसार वो शरीर प्राप्त करने के बाद क्या होगा, फिर वो शरीर भी बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर वो शरीर भी खत्म हो गया, फिर तीसरा शरीर। ऐसे शरीर हमें मिल रहा है और हम वो शरीर को धारण करके जीवन को बिता रहे हैं और मर जा रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर जन्म मृत्यु चक्कर में हम लोग फंस गए हैं। क्यों फंस गए, क्योंकि ये जो आत्मा है, आत्मा हमेशा रहने वाला है, निरंतर रहने वाला है, और इस निरंतर रहने वाला आत्मा को टेम्पररी शरीर मिला है, जो कुछ 50, 60, 80, 90, 100, 120, ठीक है कोई बात नहीं, इसके बाद तो 130, चलो ठीक है, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा, गया। तो आत्मा क्या करती है, अरे मैं तो सनातन हूं, मुझे ये टेम्पररी ये शरीर मिला है, सनातन का चीज, जैसे लोहे को ले जाके एक पतला सा पेपर में लिपटा के रखा है, कितने देर रहेगा वो पेपर, वो कागज टूट जाएगा और लोहा निकल के बाहर आ जाएगा। लोहा का लोहा के डब्बे में डाल दिया, कुछ नहीं होगा। वैसे ही आत्मा सोचता है, मैं सनातन का शरीर मुझे मिलना चाहिए, वो सनातन शरीर नहीं मिल रहा है, बार 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 यही टेम्पररी शरीर मिल रहा है, और सोचता है अरे इसमें तो कुछ करें, नहीं नहीं हो रहा है। मगर मनुष्य शरीर में ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर आके पुनः हम भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इंद्रियों को वश में करने के बाद भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं, तो ये जो भी कार्य, दूसरा कार्य देवताओं के ऊपर या किसी के ऊपर हम ये तुच्छ सुविधाओं को मांगते हैं, तो वो सुविधाएं पूरा वेस्ट है, श्रम ये वही केवलम। इसमें तो दो प्रकार के हैं, देवताओं को ध्यान करके इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग लोग तपस्या करके, बहुत कठिन तपस्या करके अपना अपना सिद्धि को प्राप्त कर लिया, उसका क्या हो गया हम थोड़ा सा देखेंगे। हिरण्यकशिपु, आप सबको पता है, ये सातवें अध्याय पूरा हिरण्यकशिपु के ऊपर ही चल रहा है। हिरण्यकशिपु इतना तपस्या किया है और आखिरी में खत्म हो गया। सालवा जो शिशुपाल का भाई, शिशुपाल को मारा गया, सालवा क्या करता है, केवल धूल को खाता है और कुछ नहीं खाता, और शिवजी के ऊपर तपस्या करता है। ये पूरा श्रीमद् भागवतम 10वीं स्कंद 76 और 77 में दिया गया है सालवा का चरित्र। और आखिरी में क्या होता है, सालवा बहुत बढ़िया एक विमान, लोहे का विमान मिल जाता है, वो लोहे के विमान से सब देवताओं को, सब जीवों को इतना कष्ट पहुंचता है, वो द्वारका ऊपर पहुंच जाता है, द्वारका ऊपर पहुंच के द्वारका वासियों को इतना कष्ट देता है, और आखिरी में कृष्ण भगवान उनको मार डालते हैं। तो वृकासुर, वृकासुर ऐसा था कि वो अपना शरीर को अग्नि में समर्पण करके शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था। शिव जी उनको वरदान देते हैं कि जिसके सिर पर हाथ डालेगा वो व्यक्ति मर जाएगा, वो जीव खत्म हो जाएगा, अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो उसका क्या हो गया आखिरी में, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर विश्वामित्र ऋषि बहुत तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी के ऊपर तपस्या करके अपना ब्रह्मर्षि का पद लेने के लिए बहुत कठिन तपस्या किया है, उसमें क्या हुआ हम देखेंगे। फिर भगवान के ऊपर पूरा भगवान को ही समर्पण करके भी तपस्या किए हैं, व्रत नियमों को पालन किया है, अदिति पयोव्रत को बहुत सुंदर विधि से पालन करके किसको किसको पाल लिया, वामन देव को अपना पुत्र के जैसे पालिया, और पूरा राज्य को, पूरा स्वर्ग को अपना बेटा इंद्र को फिर आने के जैसे कर दिया। दिति जैसे इंद्र इंद्र के चाल से वामन देव आके बलि का पूरा राज्य को अपहरण कर लिया, मेरा बेटा बलि दिति का बेटा ही है, पूरा राक्षस जाति, तो मेरा बेटा को क्या हो गया, मेरा बेटा को हम उद्धार करना है, मैं कुछ व्रत ऐसे करूंगा इंद्र के बेटा को, इंद्र को मारने वाला बेटा को मैं पैदा करूंगा। तो कश्यप मुनि से ही व्रत लेती, ये आशीर्वाद लेती है, अदिति भी कश्यप मुनि से ही आशीर्वाद लेके व्रत प्रारंभ करती है। दिति अपना गर्भ में अब इंद्र को मारने वाला पुत्र के लिए, तो दिति को क्या क्या वरदान दिया हम एक बार बताते हैं। दिति को क्या क्या नियम बताया गया काश्यप मुनि ने, पूरा अध्याय 6 स्कंद 6 अध्याय 18 में पूरा वर्णन है, उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे। उनको बताया गया जैसे आप गर्भधारण कर लिया और आप नहाने के बाद बिना किसी को देख के, आप कभी शूद्र को देख के या किसी ऐसे वस्तुओं को देख के कभी आप पूजा पाठ नहीं करना, फिर नहाना पड़ेगा, और कभी अपना हाथ अगर नहीं धोते हैं, आपको नींद आ जाता है भोजन करने के बाद, ये कभी ऐसा नहीं करना, ऐसे बहुत सारा नियम बताए हैं जो बहुत कठिन है। एक बार दिति अपना पेट में तो गर्भ बड़ा हो रहा है, ये वाला देख के इंद्र को समझ में आ गया कि मेरा वध करने के लिए पुत्र को ये मेरा सौतेली माँ दिति प्रयास कर रही है, तो वो चले जाता है, माँ मैं आया हूँ आपको पूरा का पूरा हेल्प करने के लिए। दिति देखती है अरे इंद्र आया है, आ जाओ बेटा। तो माँ तुम्हें जो भी चाहिए आपके व्रत को पूरा का पूरा कंप्लीट 100% परफेक्ट सेवा करने के लिए मैं पूरा का पूरा आपको हेल्प करूंगा, आपको सहायता करूंगा। दिति समझते है इसको कुछ नहीं पता, अरे मेरा सेवा करने के लिए आया है, मैं तो इसको मारने के लिए पुत्र को जन्म देने वाला हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो हर दिन सेवा कर, वो क्या करता है इंद्र सेवा करने के लिए नहीं आया, उनको देखने के लिए, किधर विधि नियमों को पालन नहीं किया, तुरंत वो जाके इनको कुछ करने का, वो बच्चों को कुछ करने का, वो बच्चों को जब तक दिति नियमों को पालन कर रही है वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान को अप्रोच किया है, भगवान को ही ध्यान करते हुए अपना व्रत को कर रही है। तो इंद्र क्या करता है, देखते रहता है, एक दिन वो इतना थक जाती है, पेट में बच्चा बड़ा हो रहा है और वो थक जाके सो जाती है भोजन करने के बाद, हाथ ठीक से नहीं धोया और सो गई। जैसे व्रत का कुछ ठीक से नियम पालन नहीं हुआ, ये इंद्र क्या करता है, पेट में चले जाता है, उसको बच्चा को 7 पीस चक 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 करके देखता है मर गया कि नहीं, अरे दिखता है सात पीस, फिर सात आत्मा आ गए उसके अंदर, और देखते हैं सात के साथ, अरे हमको क्यों मार रहे हैं, हमको क्यों मार रहे हैं, हम तो मरीच हैं, आपका सेवा करने वाले हैं, हमको क्यों मार रहे हैं, देखते हैं अरे सात के साथ जिंदा, फिर एक एक को फिर सात सात चक 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 चक, सात इंटू सात कितना हो गया 49, 49 बच्चे, 49 बच्चों को देखते हैं, कुछ तो मर गया कि नहीं, मर गया कि नहीं, अरे 49 के 49 बिल्कुल जिंदा है, फिर देखते हैं अरे 49 के 49 जिंदा है, कोई बात नहीं, बाहर आ जाते हैं, बाहर आके देखते हैं, फिर दीति जन्म देती है अपने बच्चों को, फिर देखती है वो तो 49 मरीज, ये मरुत लोग भगवान इन भगवान के सेवक है, इंद्र का सेवक है, तो ऐसे कैसे हो गया, एक बच्चा पैदा होना था वो 49 कैसे पैदा हो गए, और ये मरुत जो इंद्र की सेवा करने वाला कैसा पैदा हो गए, तो बड़ा योजन करती है, फिर उनको बताया जाता है, इंद्र बताते हैं कि देखिए माँ मैं आप जब नियमों को पालन नहीं किया, मैं जाके ऐसे ऐसे 49 में डिवाइड कर दिया, और भगवान की कृपा के वश आपका जो भगवान के ऊपर इतना आपका ध्यान था उसका पुण्य के कारण ये 49 के 49 बच गए और जीवित रहे, और मैं उनको स्वर्गलोक ले जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। और दीति भी भगवान की सेवा में पूर्णतया रहने के बाद शुद्ध हो गई और भगवत धाम चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम अध्याय 6 स्कंद 6 अध्याय 18 में दिया गया है। प्रसादरा जो गाय को मार दिया और आखिर में उनका कैसे भगवान की सेवा में लग के चले गया हम देखेंगे। गजेंद्र भगवान का पूरा मन लगा के अपने इंद्रियों को मन को पूरा भगवान की सेवा में लगा के भगवान उनको आके रक्षा करते हैं। तो हिरण्यकशिपु का कठिन तपस्या, इतना तपस्या था कि उनके हड्डियों को सब कुछ खा जाता है, कीड़े मकोड़े सब उसको खा जाता है, फिर भी वो नहीं छोड़ा, तपस्या किया है हजारों साल, फिर वर प्राप्त कर लिया, अंदर नहीं मरना, बाहर नहीं मरना, ऊपर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, नीचे नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं, सुबह नहीं, रात को नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नरसिंह भगवान आके उनको मार डाला। तो इतना जो भी किया है उससे क्या फायदा हुआ, श्रम ये वही केवलम। वैसे ही सालवा जो शिशुपाल के भाई था वो ऐसे हर दिन केवल धूली धूल धूल खाता था और शिवजी के ऊपर तपस्या करता था। शिवजी पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ऐसा लोहे का रथ दे दीजिए जिससे मैं जिधर चाहिए उधर घूम सकूं, जिधर से जिसके ऊपर से जो भी अस्त्र जो भी शस्त्र जितना भी डालें खत्म कभी ना हो, ऐसा ऐसा करके पूरा वर मांग लेता है और शिवजी उनको दे देते हैं। और ये सालवा सब जगह पर ये करके फिर द्वारका पहुंच जाता है, द्वारका वासी उनको इतना कष्ट देता है और प्रद्युम्न चले जाता है उनको ये करने के लिए, प्रद्युम्न का भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो मूर्छित हो जाता है, उसको मूर्छित कर देता है, बहुत शक्तिमान बन गया। तब भी कृष्ण द्वारका में पहुंचते हैं, द्वारका में पहुंचते अरे क्या हो गया, फिर उनसे युद्ध करते हैं और उनको अपना सुदर्शन से मार डालते हैं। तो इतना कठिन तपस्या करके क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। वैसा ही वृकासुर, वृकासुर तो अपने शरीर को काट काट के अग्नि में हवन करता था और आखिरी में शिव जी उनको अपने आप को जब जलाने के लिए रेडी हो गया, शिव जी उनको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, मैं जिसके जिसके सिर के ऊपर हाथ लगाता हूं शिव जी वो भस्म होके मर जाना चाहिए, भस्म हो जाना चाहिए। शिव जी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम तो किसको मारने वाले, दुष्टों को असुरों को जो भी है गलत काम करता है उन लोगों को मारने वाले, मगर वो क्या करते हैं शिव जी के ऊपर ही हाथ लगा के मैं चेक करना चाहता हूँ ये काम करता है कि नहीं, शिव जी के सिर के ऊपर ही लगाने के लिए प्रयास किया। शिव जी भागते हैं, अरे बाप रे मेरे ऊपर ही प्रयास कर रहे हो, मैं तो पता नहीं क्या होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, ब्राह्मण में रूप में आके, अरे तुम किधर भाग रहे हो, कितने दूर से भाग रहे हो? शिव जी पीछे बैठ गए, अरे क्या होगा अभी, देखते हैं भगवान कैसे बचाएगा मुझे। तो हाँ, मैं इतना तपस्या किया था, तपस्या करके मुझे वरदान प्राप्त हुआ है, ऐसे वरदान। हरे ये बालक, हाँ ब्राह्मण बालक कहते हैं, अरे तुम तो शिवजी को इतना यकीन कर रहे हो, शिवजी जो भी वर देते हैं हो जाएगा, आपको पता नहीं वो इसमें दक्ष यज्ञ में क्या हुआ था? अरे दक्ष यज्ञ में पूरा उनका शक्ति खत्म हो गया, हाँ वो बड़ा राक्षस को उत्पन्न किया और वो तो सबको मार डाला, खत्म कर दी, उनका शक्ति खत्म हो गया, उनके पास शक्ति है ही नहीं। अरे और वो शिव भी क्या है, क्यों भाग रहा था, वो चुपचाप खड़े रहना था, वो भी बड़ा मूर्ख है, वो मूर्खता को तो यही है, हाँ वो तो चुपचाप खड़े होने थे, हाथ रखो, मगर वो डर गया कि मेरा वर निष्फल हो जाएगा और मेरे ऊपर तुम गुस्सा करोगे, इसलिए भाग रहा था। ऐसा नहीं कि भस्म हो जाएगा बोल के भाग रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, क्या यही तो सत्य है, चाहिए तो तुम्हारे सिर पर हाथ लगा के देखो। तो वो सिर पर हाथ लगाया, एकदम गुजर गया, भस्म हो गया। तो ये लोग जो भी है भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं, मगर देवता को प्रसन्न करके कुछ शक्ति मांगते हैं, वैसा ही विश्वामित्र। विश्वामित्र इतना बढ़िया तपस्या कर रहा था, इंद्र छोटा सा एक ना अपना मेना, मेनका को भेज दिया, और उनका पैरों का जो आवाज को देख के उनका मन, उनका आंख खुल गया और मन उनके ऊपर लग गया। और जब शकुंतला पैदा हुई तब तक उनका दिमाग में आइडिया नहीं आया कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर अचानक अरे रे रे रे, मैं पूरा समय बर्बाद कर दिया, मैं तो इसको छोड़ के जा रहा हूँ, बेटी भी नहीं, पत्नी नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए। मैंने कहा, कहती है मैं कौन हूँ समझाए, मैं स्वर्ग से आया हूँ, ये बंधन गिंधन हमारे पास नहीं है, मैं तो छोड़ के मैं निकला, वो चले गई, ये चले गया। ठीक है, शकुंतला का कहानी आपको पता है। तो उनका तपस्या ऐसे एक ही मोमेंट में खत्म हो जाता है, और जो भी पाते हैं वो भी मोमेंटरी टेम्पररी, वो तो खत्म होने वाला ही है, हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, तो इसका कोई यूज नहीं है। सौभरी मुनि भी तपस्या कर रहा था, पानी के अंदर जाके, पानी के ऊपर रहा तो कुछ ना कुछ साउंड आते रहता है, डिस्टर्ब करता है, आंख भी दे सकता है, कुछ कर सकता है, अलग अलग चीजें लोग आके डिस्टर्ब करेंगे। मैं पानी के अंदर, यमुना जी के अंदर, तो सौभरी मुनि का सौभरी घाट भी है, सब लोग जाके देखना चाहिए। वो सौभरी मुनि पानी के अंदर चले गया और तपस्या कर रहा है, मगर एक दिन ऐसे हुआ, दो मछलियों का एक कार्यकलापों को, बड़ा प्रेम कार्यकलापों को देख के, अरे मैं इतना साल हो गया मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा है जो ये मछली को मिल रहा है, मैं भी शादी कर लेता हूँ। वो गया राजा के पास, जाके उनसे पूछते हैं, ये राजा आपका 50 बेटियाँ हैं, मुझे एक बेटी को मुझे दे दो, मुझे पत्नी के रूप में दे दो, कन्यादान करो मेरे से। राजा देखते हैं ये तो बड़ा सिद्ध व्यक्ति है, इनको ना कहा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ भी शाप दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास बहुत शक्तियां हैं। तो वो कहते हैं, देखो ये बच्चे ना बड़े हो गए, आप भी कह रहे हैं ये शादी का लायक हो गए हैं, तो शादी का लायक होने के बाद ना पिता का कहना नहीं मानते हैं, आप जाइए, जाके जो राजकुमारी आपसे विवाह करने के लिए रेडी हो जाते हैं उनसे हम विवाह कर देंगे, जो भी आपसे विवाह करना चाहती है हम रेडी है, जो देखो मेरा हाथ में नहीं। वो थोड़ा डिप्लोमेसी ऐसा नहीं था उस काल में, उस जगत में बेटा बेटी तो देखते भी नहीं उनका पति कौन है, मगर ये जो एडवांस्ड कलयुग में जो होने वाला है पहले ही बता दिया वो। आज के जमाने में यही हो रहा है, कोई पुत्री अपना पिता का कहना किधर मानती है, मेरा मैं देखना है लड़का को, मैं पसंद करना है तब भी मेरा शादी होगा, ऐसा नहीं पापा पसंद कर लिए मम्मी पसंद कर लिए शादी हो जाएगा, नहीं मानेंगे नहीं। इस वास्तव को हम जानना चाहिए, हम जिद नहीं करना, छोड़ देना, जैसे भगवान का इच्छा है जैसे भगवान का कृपा है। तो ये गया, मुझे समझ में आ रहा है मैं ये रूप में हूं, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा शरीर पूरा कांप रहा है जब मैं चल रहा हूं, मैं इतना वृद्ध हूं, ये राजा मुझसे ये कह रहा है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, मेरा योग सिद्धि इतना है, मैं ये सिद्धियों को यूज इस्तेमाल करके बढ़िया सा नौजवान इतना सुंदर। तो 50 वो आया, अरे कौन है सोबरी ऋषि कौन है, अरे मैं ही हूं। हाँ आप ही है, अच्छा। वो ले जाता है जिधर वो 50 राजकुमारियां रहते हैं, उधर जाके देखते हैं राजकुमारी, एक राजकुमारी बोलती है ये तो मेरा योगी है, तुम्हारा योगी नहीं, नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ मेरा योगी है, नहीं नहीं मैं छोटी हूँ, छोटी का बात सब लोग मानना चाहिए, मैं शादी करूंगा, अरे मैं शादी, बड़ा लड़ाई हो रहा है। महाराज आते हैं, अरे क्या हो रहा है, राजकुमारियां लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। वो जाके देखते हैं, हे राजकुमारी ये मेरा पुत्रियां क्यों लड़ रहे हो, कुछ ये बलात्कार कर रहा है, कुछ कह रहा है कि मुझसे शादी कर, नहीं 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 ये मैं इसको शादी करूंगा, ये मेरा बहन कहती है वो उसके, ये सब लोग कह रहे हैं, सब हर एक ऐसा ही कह रहे हैं कि मैं शादी करूंगा। 50 राजकुमारियों को शादी कर लेता है और 50 बड़े 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 महल, उसमें अनेक अनेक सेवक, अनेक अनेक सुविधाएं, संपत्ति सब कुछ, इतना भोग, 50 पत्नियां उनके साथ, इतना शक्ति था और वो शक्ति को उपयोग करके 50 अपना रानियों के साथ इतना प्रेम व्यवहार कर रहा था, हर एक का एक 10-10 बच्चे हो गए और वो ही एक बहुत बड़ा सिटी शहर के जैसे बन गया वो जो जिधर रहता था, फिर भी उनको आत्मा उनके मन में संतुष्टि आई नहीं। ये जो काम है उसको संतुष्टि करने के लिए अगर फिर आग में हम और ज्यादा घी डालें तो आग बुझेगा नहीं, और ज्यादा होते जाएगा, यही स्थिति सौबरी मुनि का था। फिर क्योंकि भगवान को वो याद कर रहा था, भगवान के ऊपर ध्यान था उनका, तो एक दिन सोचता है अरे क्या हुआ, मैं तो दो मछली अपना प्रेम कलापों को देख के मेरा क्या हो गया था, मैं इतने सालों साल पानी के अंदर जाके तपस्या कर रहा था, मेरा बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गया, मैं शादी करके आ गया हूं, हे पूरा यूनिवर्स, हे पूरा ब्रह्मांड मुझको देखो, मैं पतन हो चुका हूं, मैं काम के वश में आके 50 रानियों को मैं लेके आया, मैं पतन हो गया हूं, अब मैं मेरा जिंदगी पता नहीं कितना बच गया है, अब मैं बाहर आ जाता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो चले जाता है भगवान के पूर्णतया सेवा में। तो ये भगवान के सेवा में लग गया बच गया, अगर भगवान के सेवा में नहीं लगता है तो उसका जीवन पूरा व्यर्थ होने वाला ही था। हम देखते हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इतना नीच जाति में, मुसलमान जाति में पैदा हुआ, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के आदर्शों को पालन करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए सदा वो अपना जीवन को बिता रहा था। तो मुसलमान राजा को बताया गया कि ये आदमी मुस्लिम का परिवार में जन्म होने के बाद देखो ये क्या कर रहा है, ये तो वैष्णवों का वेश धारण करके वैष्णव ही बन गया, ऑलमोस्ट वैष्णव ही बन गया, देखो इसको सुधारो, इसको पनिशमेंट दो। तो ये कहते हैं 22 जगह पर, 22 मार्केट प्लेसेस, 22 मार्केट जगह में जाके इसको मारो पीटो तब ये सुधर जाएगा, या इसको मार डालो मार मार के। तो इसको जितना भी मारे वो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से, चैतन्य महाप्रभु के कृपा से उनको कुछ नहीं होता। फिर ये सेवक जो मार रहे थे वो उनके पैरों में पड़ के, भाई साहब आप मर जाओ कुछ करो, बोलते हैं देखो आपने मारा है मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है अब मैं मर गया बोल के समझो, सब लोगों को बोलो मैं मर गया, मैं ऐसा ही मरने के जैसे एक्शन करूंगा, मुझे ले जाके गंगा में फेंक दो। तो वो हाय हरिदास मर गया, हरिदास मर गया, दो दो उठा के गंगा में फेंक देते, गंगा में फेंक, सब लोग देख रहे गंगा में फेंक दिया, अरे गया गया, हाँ सब लोग चलो चलो चलो। जैसे गंगा में गिरा थोड़ा देर होने के बाद तैर के उस तरफ चले गया और चैतन्य महाप्रभु का सेवक बन के पूर्णतया अपना छोटा झोपड़ी बनाया और बहुत अच्छा भगवान का सेवा कर रहे थे और 300,000 माला जप कर रहे थे। लोगों को, कोई दुष्ट लोग रहते हैं हर जगह पर, उनको इसके ऊपर प्रभाव करने के लिए एक वैश्या को भेजते हैं, वो वैश्या इसको अपने काबू में लाने का प्रयास करती है मगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ते नहीं। पूरा मेरा माला जप होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा, तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वो जप कर रहे हैं जप कर रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, ये तो सो गई, अगला दिन फिर अगला दिन भी यही हुआ, ऐसे होते ही रहा। जैसे वो उनके संपर्क में आ गए वो वेश्या भी पूरा का पूरा अपना खराब जिंदगी को छोड़ के पूर्णतया भगवान के सेवक बनने के लिए उनके शरण में आ जाती है और उनको ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जब शरीर त्याग दिया है, महाप्रभु अपने हाथों से सिद्ध बहुला जिधर उनका शरीर त्याग दिया था, उधर से समुन्द्र के किनारे बीच तक, पुरी के बीच समुन्द्र के किनारे में जिधर समाधि हुआ उधर तक वो अपने हाथ से लेके गए, अपने हाथ से पूरा का पूरा उनका संस्कार किए और उनका इतना सम्मान किए। हम देख सकते हैं जो भगवान की सेवा में है उनको जरूर लाभदायक होगा, भगवत धाम पहुँचेंगे। ये प्रसाद रहा, मनु का 10 पुत्रों में एक पुत्र था, उनको एक काम दिया गया था कि रात में गायों का रक्षा करना, तो गायों का वॉचमैन, रात भर वॉचमैन करते हैं, गायों के ऊपर कोई हमला करता है, कोई टाइगर या भालू जो भी है आता है तो उससे रक्षा करना। तो ये रात में चले जाता है, पर एक दिन बारिश हो रहा था, अंधेरा अंधेरा, गाय चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसका मतलब है कोई आ गया, भाग या कुछ आ गया, उसको गाय को पकड़ लिया है। अरे मेरे गाय को पकड़ा है, किधर 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 से आवाज आ रहा है, पेड़ के पीछे आवाज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बाघ आ गया और गाय को पकड़ लिया, मेरा गाय को पकड़ लिया, कुछ भी नहीं दिख रहे, अपना तलवार लिया, गाय को पकड़ लिया, मारा और देखते हैं खून खून निकल रहे, हाँ और शांत हो गया, सब गाय भी शांत हो गया और देखते हैं हाँ मैं तो बाघ को मार डाला और गाय का रक्षा हो गई है, बहुत बढ़िया। तब तक वो जाके नहा धो के संध्या वंदन करके फिर सुबह हो गया, आते हैं आके देखते हैं, अरे ये तो गाय मर गया है, मैं जो प्रहार कर रहा था ये तो गाय को लगी है। फिर देखते हैं उसका एक कान, बाघ का, टाइगर का एक कान था और खून का निशान, अच्छा टाइगर का कान कट गया मगर टाइगर बच के चले गया, अरे कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं गाय का रक्षा के लिए आया था, गाय को मार डाला, मुझे पता नहीं गुरुजी क्या कहेंगे। वशिष्ठ मुनि देखते हैं, तुम क्या आदमी हो, तुम क्षत्रिय हो या क्या हो, क्षत्रिय अपना एनिमी कौन है, मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र उसको पहचानना है, अपना मित्र को अपना सेना को मार डालते हो क्या? अपना सेना को रक्षा करना है कि अपना सेना को ही मार डालते हो? नहीं नहीं, पूरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाया नहीं दे रहा था, मैं क्या करूं, मैं अपना तलवार लिया मारा, वही तो मैं कह रहा हूं, तुम क्षत्रिय रहने का लायक नहीं हो, अगला जन्म में तुम शूद्र बन जाओ। कान खोल के सुनते हैं, अगला जन्म में शूद्र बन जाओ, अगला जन्म में शूद्र बन जाओ। अगला जन्म रहा तो शूद्र बनूंगा, अगर अगला जन्म ही नहीं रहा तो शूद्र किधर से बनूंगा? गुरुदेव मुझे आशीर्वाद करो, अगला जन्म रहा तो मैं शूद्र बनूंगा, ऐसा ही हो जाए। तो उनको समझ में आया पॉइंट, अगला जन्म रहा तो मैं शूद्र बनूंगा और नीचे जाति में चले जाऊंगा। भगवान के सेवा में पूर्णतया अपने आप को लगाया और भगवत धाम चले गया, अगला जन्म हुआ नहीं। तो ये प्रसादरा का वृत्तांत हम देख सकते हैं अध्याय 2 स्कंद 9 में पूर्णतया आप देखेंगे। तो इसलिए अगर हम केवल इंद्रियों को कंट्रोल में रख के अगर भगवान के ऊपर हम ध्यान नहीं करते हैं, वो क्या होगा? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही होगा। और देवता का ध्यान करके हम कुछ पाने के लिए अगर प्रयास करते हैं, वो केवल वेस्ट का काम है। आज का श्लोक का यही है, हम सोच रहे थे इतना सा हम आपको आपसे बात करें, अगर आपका कुछ प्रश्न रहा तो हम करेंगे। आपका कोई प्रश्न है माता जी पूछिए, कोई है? एक मिनट इधर आइए, माता जी पहले हाथ उठाए। नहीं, ये चीज है, प्रभुपाद जी ने बताया कम से कम 16 माला करके आप और कोई सेवा कीजिए, या और कोई सेवा कर रहे हैं बीच में कैसा भी करके 16 माला कम से कम 16 माला करना चाहिए। हम उतना ज्यादा सेवा नहीं लेना है, अगर आपको अवरोध हो रहा है आप 1 घंटे 1.5 घंटे ले नहीं सकते, आपका स्लीप टाइम जो नींद का समय है उसको कम करना है। आप नींद कितने घंटे कर रहे हैं, कितने घंटे सो? नहीं, जो भी है जो प्रश्न पूछा है उनसे कहना है आप नींद को थोड़ा कम करो, जब करके सो जाओ। अगर 12 बजे रिटर्न हो रहे हैं, 12 बजे काम से सेवा से 12 बजे आ रहे हैं, 12 बजे जब करो, 1 बजे सो जाओ, फिर 4 बजे तक उठ जाओ। कभी एक बार ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि इतना सेवा तो नहीं लेना चाहिए। जप 16 माला कम से कम होना ही चाहिए। प्रभुपाद ने बताया पहले 16 माला कैसे भी करो, 16 माला करने के बाद अगर ज्यादा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, सेवा में रहो। ऐसा नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूँ 16 माला ही नहीं, अब 5 माला 10 माला कर रहे हैं, फिर 8 माला कर देगा, फिर 5 माला करेगा, माला ही नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, गलत है, उससे वो भटक जाएंगे, उनका वो अपना मन को और कोई दूसरा लक्ष्य में लगाए हैं, भगवान के प्राप्ति या जन्म मृत्यु चक्र से बाहर आने का वो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा सेवा कम करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण, बताइए।
अच्छे से सोलह माला भी हो रहा है, दो वर्ष की सर्विस और भी सेवाएं चलती रहती हैं, मगर हमारा देखते हैं एक दूसरे के पिछले जैसे कोई लड़का लड़की आता है विदेश, एक विदेश का कल्चर तो अलग है मगर इंडियन कल्चर हमारा अलग है। उसकी वजह से हम लोग जैसे लड़का है लड़की है, आपने बताया कि वो लड़की बात में नाम की प्रयोग है, तो ये आगे चल के फिर एक बंधन बन जाते हैं, फिर एक प्रमोश हो जाता है।
जो भगवान भगवान कृष्ण भावना भावित नहीं है ऐसा ही होता है। जिनका जिनका जीवन कृष्ण भावना भावित नहीं है वो ऐसा ही होता है, क्योंकि अपना सेल्फिश, हाँ सेल्फिश नेचर, मुझे चाहिए वो नहीं दे रहा है, ये सोचता है मुझे चाहिए ये नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हें, मुझे भी नहीं चाहिए, चल रहा। इसमें सैक्रिफाइस का त्याग का ये नहीं सोचता है कि भगवान जो दे रहे हैं मुझे इतना दिया है, भगवान मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपने जो दिया है, बस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिए हो, ये नहीं समझते। कृष्ण भावना भावित नहीं रहा तो यही प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा डाइवर्स। हाँ माता जी, कौन सा
गजेंद्र?
हाँ गजेंद्र के बारे में सबको पता है, मैं भगवान का वो भी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था, फिर वो भगवान को विष्णु नारायण को बुलाए, विष्णु को बुलाए, कृष्ण को बुलाए, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई ब्रह्मा को भी बुला सकता था, नहीं, जो भगवान के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। दैट इज अवेंट, यस मदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।